नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयां छूने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत की व्यापार कूटनीति का निर्णायक क्षण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे हैं और भारत के विकास में निजी और विदेशी बैंकों के साथ बराबरी से खड़े हैं। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने युद्ध प्रणालियों के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के साथ ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया परिकल्पना के अनुरूप स्थानीय विनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है और समर्थन करता है। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि किसी भी नए खनन पट्टे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विशेष रूप से संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में घरेलू मांग में मजबूती के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछली 6 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि हुई है। जुलाई से सितंबर के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 तिमाहियों में सबसे अधिक 8.2% रही। पिछली तिमाही में ये 7.8% थी। सरकार ने सोशल मीडिया पर इंडिया पोस्ट के नाम से चल रहे फर्जी लकी ड्रॉ घोटाले के बारे में झूठे दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई के अनुसार ये घोटाला इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को मुफ्त उपहारों का लालच देकर उनकी निजी जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि ये संदेश इंडिया पोस्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि ये घोटाला है। पीआईबी ने नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है। हरियाणा विधानसभा ने दुकानों और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है, जबकि साप्ताहिक कार्य घंटे की कुल सीमा 48 घंटे ही रखी गई है। 1958 के अधिनियम में संशोधन कर हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। विधेयक में बिना विश्राम के निरंतर कार्य करने की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे करने का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिह्नित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिह्नित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य स्थितियों का हवाला देते हुए वीजा जारी करने सहित सभी कौंसलर सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ये निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।